देखिए भाई, सबक किताब पर आगे। फसल बिदा के इसम बरदो जरबस्त मारिफा और नकेरा। मारिफा आन अस्त के मौजू बाशद बराए चीजे मुआयन व आ बरहफ्त नौ अस्त। अव्वल मुजमरात दोवम आलाम चू जैदन व आमरुन व सिवम असमाय इशारात चहारुम असमाय मौसूला व इन दो किस्म रा मुबहमात गोयंद। पंजुम मारिफा ब निदा चू या रजुलु। ششم معرفہ با الف و لام چون الرجل। ہفتم مضاف با یک ازینھا چون غلامہ و غلام زید و غلام ھذا و غلام الذی عندی و غلام الرجل। و نکرہ آن است کے موضوع باشد برائے چیز غیر معین چون رجل و فرس। گزشتہ سبق میں इसमें गैर मुतमक्किन की चंद अकसाम हमने पढ़ी थी। मुसन्निफ ने आपको बतलाया था कि इसमें गैर मुतमक्किन जो है वो आठ किस्म पर है। पहली किस्म कौन सी है? मुजमरात। ये नाम आपको याद होने चाहिए आठों भाई। पहली किस्म मुजमरात, दूसरी किस्म अस्माए इशारा, तीसरी किस्म अस्माए मौसूला, चौथी किस्म अस्माए अफ़ाल भाई, पांचवी किस्म अस्माए अस्वात भाई, और छठी किस्म अस्माए ज़ुरूफ, सातवीं किस्म अस्माए किनायात, और आठवीं किस्म मुरक्कब बिनाई। ज़मीरें आपने पढ़ा था कि ज़मीर वो है जो मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या ऐसे गायब पर दलालत करे जिसका जिक्र पहले गुजर चुका हो, पहले हो चुका हो। और अस्माए इशारा वो है जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो चीज मुजक्कर हो तो मसलन कहेंगे हाजा, और मुअन्नस हो तो क्या कहेंगे? हाजी ही। तो कई अस्मा इशारा इन्होंने आपको बतलाए थे भाई, मुजक्कर के लिए भी, तस्निया के लिए भी, जमा के लिए भी, और इसी तरह मुअन्नस के भी, मुफरत तस्निया और जमा के लिए। उसके बाद अगली किस्म अस्माए मौसूला भाई, तीसरी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की। और अस्माए मौसूला मैंने बतलाया था इसका तर्जमा अमूमन वो जो के या वो जिसने के, तो इसके साथ किया जाता है। और वो जो के, देखो माना समझ में नहीं आता, वो जिसने के इसे भी माना समझ में नहीं आता, तो इसमें मौसूल जो है इसके लिए हमेशा सिला चाहिए, सिला। और सिला क्या होता है? जुमला होता है। तो इसमें मौसूल के साथ जब सिला मिलेगा तो फिर इसमें मौसूल का माना आपको समझ में आएगा। जैसे अल्लजी, इसका तर्जमा क्या करते हैं वैसे? वो जो के या वो जिसने के, और आगे ज़रबका मिला दिया, अल्लज़ी ज़रबका, वो जिसने आपकी पिटाई की थी। अब बात समझ में आ गई कि किस आदमी की बात हो रही है जिसने पिटाई की थी भाई। तो इसमें मौसूल, और अस्माए मौसूला के अंदर फिर इन्होंने आपको बतलाया था वो अलिफ लाम जो इसमें फाइल और इसमें मफ़ऊल पर दाखिल हो वो भी क्या है? इसमें मौसूल है। और फिर उसके बाद अगली किस्म जो थी वो अस्माए अफ़ाल पड़ी। अस्माए अफ़ाल कुछ अस्मा हैं, इसम हैं, लेकिन माना किसका अदा करते हैं? फेल वाला। तो इनमें से कुछ जो हैं वो अमर हाजिर वाला माना अदा करते हैं, और कुछ जो हैं वो फेले माजी वाला माना अदा करते हैं, और कुछ जो हैं वो फेले मुजारे वाला माना अदा करते हैं। लेकिन फेले मुजारे वाला जो माना अदा करे जो इसमें फेल, वो कलील हैं, इसलिए मुसन्निफ ने उनको शुमार ही नहीं किया, उनको गिनवाया ही नहीं। और क्या कहा कि इसमें फेल कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर, एक वो जो अमर हाजिर के माना में हो और एक वो जो फेले माजी अमर हाजिर के माना में हो। जैसे रुवैदा, रुवैदा इसका माना है अमहिल, मोहलत दे दे, देखो हुक्म दिया जा रहा है कि मोहलत दे दे। या इसी तरह बल्हा, इस बल्हा का क्या माना है? छोड़ दे, उतरुक या दा, उतरुक अमर का सीगा भाई, देखो ये उसका माना अदा कर रहा है बल्हा। और इसी तरह हयहल का माना है लाओ भैया, मुतवज्जे हो जाओ। और इसी तरह हलुम्मा का माना भी है ले आओ, या इसका माना है आ जाओ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा फेले माजी के माना में हो, जैसे हैहाता। हैहाता का क्या माना? बाउदा, वो दूर हो गया। और इसी तरह शताना, शताना का क्या माना? जुदा हुआ, वो जुदा हो गया। लेकिन मैंने आपको बतलाया था एक है फेल और एक है इसमें फेल। इसमें फेल में मुबालगा होता है। क्या होता है? तो एक आदमी के बारे में बतलाना कि वो दूर हुआ तो आप कहेंगे बाउदा। और अगर आप मुबालगे के साथ, मुबालगा कहते हैं किसी चीज में ज्यादती को बयान करना, ज्यादा। तो जब आप मुबालगा करना चाहें, मसलन ये कहना चाहें कि वो ज्यादा दूर हुआ या बहुत दूर हुआ, तो उसके लिए फिर आप इसमें फेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हैहाता ज़ैदुन, ज़ैद बहुत दूर हुआ। या शताना, ज़ैद बहुत जुदा हुआ, भाई ज़ैद बहुत ज्यादा जुदा हुआ। अगली किस्म जो थी वो गैर मुतमक्किन की, वो अस्माए अस्वात हैं। अस्माए अस्वात, भाई अस्वात जमा है सौत की, और सौत आवाज को कहते हैं। ये वो अस्माए गैर मुतमक्किन हैं जिनके जरिए आवाजों को जिक्र किया जाता है। कभी खुशी या गम की या तकलीफ की आवाज को नकल किया जाएगा, कभी दूसरे हैवान की आवाज को नकल किया जाएगा, और कभी दूसरे हैवान को बिठाने के लिए या बुलाने के लिए या डांटने के लिए जो आवाज है इसके साथ जिक्र किया जाएगा। जैसे ओह ओह, ये किस चीज की आवाज है? खांसी की आवाज है। देखो सीने में तकलीफ है, उसकी वजह से इंसान ओह ओह करता है। या इसी तरह कोई अरबी में, मसलन उर्दू में कोई चीज अच्छी लगे, पसंद आए तो कहते हैं वाह वाह। अरबी में क्या कहते हैं? बख बख, भाई बख बख कहते हैं, या बखा बखा कहते हैं। और इसी तरह जानवर को बिठाने के लिए, मसलन ऊंट को बिठाने के लिए अरब क्या आवाज निकालते हैं? नख या नखिन, नखिन भाई तनवीन के साथ। और जानवरों की आवाज और नकल करने के लिए, मसलन कौवे की आवाज नकल करते हैं कि जहां हम उर्दू में कहते हैं कौवा काय काय करता है, और अरब क्या कहेंगे कि कौवा गाकी गाकी करता है भाई। अच्छा जी, उसके बाद छठी किस्म आई थी अस्माए ज़ुरूफ। अस्माए ज़ुरूफ में इन्होंने आपको बतलाया था कि कुछ ज़र्फ़े ज़मान हैं जो जमाने पर दलालत करते हैं, और कुछ ज़र्फ़े मकान हैं जो जगह पर दलालत करते हैं। आपने पढ़ा था कि ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं। अरबी जुबान में ज़र्फ़ किसे कहते हैं? बर्तन को। और चूंकि हमारा हर फेल, हम जो भी फेल करें, कोई भी काम करें, वो किसी न किसी जमाने में होगा या किसी न किसी जगह में होगा, तो इसलिए जगह और जमाने को ज़र्फ कहते हैं कि हमारा फेल उसके अंदर होता है। जैसे मसलन आप पानी बर्तन के अंदर रखें तो आप क्या कहते हैं? पानी बर्तन में है, पानी बर्तन में है। इसी तरह आप जो भी काम करें वो किसी न किसी जमाने में होगा, इसी तरह वो किसी न किसी जगह में होगा। आप कोई अपना ऐसा फेल बता सकते हैं जहां जमाना ना हो या जगह ना हो? आप जो भी फेल करेंगे वो किसी न किसी जमाने में होगा और किसी न किसी जगह में होगा। ये हो ही नहीं सकता। आप कोई फेल करें और जमाना भी कोई ना हो और जगह भी कोई ना हो। जमाना और जगह है, इसको इसलिए ज़र्फ कहते हैं कि हमारा फेल इसमें होता है। तो ज़र्फ ज़मान इन्होंने आपको कुछ गिनवाए थे कि इज है, इज़ा है, मता है, कैफा है, अयाना है, अमसी, मुज, मुंजु, कत्तु, आउजू, कबलू और बादू वगैरह। इसी तरह ज़र्फ मकान आपको इन्होंने गिनवाए थे कि हैसु, कुद्दामु, तहतु, फौकु वगैरह भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान सिर्फ यही नहीं है जो इन्होंने जिक्र करवा दिए, बल्कि ज़र्फ ज़मान और मकान और भी हैं, लेकिन जो मबनी थे वो उन्होंने यहां जिक्र कर दिए भाई। मबनी चंद मबनी जिक्र कर दिया। और इसमें भी फिर बतलाया था कि इनमें से बाज़ ज़ुरूफ ऐसे हैं कि उनकी तीन हालतें होती हैं, तीन हालतें। वो हमेशा मुज़ाफ़िले चाहते हैं, जैसे कबलू और बादू, कबलू और बादू। ये तो इस ज़र्फ़े ज़मान के अंदर कबलू और बादू, और ज़र्फ़े मकान के अंदर कुद्दामु, तहतु और फौकू। ये हमेशा क्या चाहते हैं? मुजाफोन इले। कबलू का माना पहले, भाई किस से पहले? जैद से पहले, अमर से पहले या बकर से पहले। तो वहां मुजाफिले चाहिए कि कबला जैदिन, قبل عمر, اور فوقو کا معنی اوپر, بھئی کس چیز کے اوپر, چھت کے اوپر, کمرے کے اوپر, مکان کے اوپر, تو مضاف الیہ چاہیے. تو ان کے لیے ہمیشہ مضاف الیہ چاہیے ہوتا ہے. اور ان کے استعمال کی پھر تین طریقے ہیں. کبھی لفظوں کے اندر ان کے ساتھ مضاف الیہ ذکر کر دیتے ہیں, جاءنی زید قبل عمر, میرے پاس زید آیا تھا کس سے پہلے, عمر سے. تو دیکھو قبلہ کے بعد مضاف الیہ چاہیے تھا اور آپ نے بھی لفظوں میں ذکر کر دیا. اور کبھی یوں کرتے ہیں لفظوں سے تو ختم کر دیتے ہیں مضاف الیہ کو, لیکن نیت کے اندر وہ پھر بھی مراد ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے پہلے آیا تھا, تو میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید قبل, دیکھو عمر کو میں نے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, زید اور عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ زید پہلے آیا تھا یا عمر. تو اب میں عمر کو, تو میں اس کو عمر کو حذف کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ زید عمر سے پہلے آیا ہے, بکر یا خالد کی بات یہاں نہیں ہو رہی. تو میں اس کو حذف کرتا ہوں, جاءنی زید قبل, پہلے کیا تھا, قبل عمر, قبل عمر. پھر عمر کو جب حذف کیا تو اب قبل نہیں پڑا بلکہ قبل مبنی کر دیا ضمہ پر, تو یہ مبنی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ لفظوں سے بھی مضاف الیہ کو ختم کر دیں اور نیت سے بھی ختم کر دیں. جاءنی زید قبلا, زید پہلے آیا تھا, کس سے پہلے, یہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, چاہے عمر سے پہلے ہو, بکر سے پہلے ہو, خالد سے پہلے ہو, کوئی آپ نے ذکر نہیں کیا. تو ان کے استعمال کی گویا کتنی صورتیں ہو گئیں, تین. ایک صورت کیا, مضاف الیہ عبارت میں ذکر ہو. دوسری کیا صورت, عبارت میں تو ذکر نہیں لیکن نیت میں موجود ہے, مراد ہے, اس کا ارادہ کیا ہے. مراد, مراد کا معنی جس کا ارادہ کیا جائے, تو مراد ہے لیکن لفظوں میں موجود نہیں. اور تیسری کیا صورت ہے کہ نیت میں بھی مراد نہیں, نیت میں بھی ارادہ نہیں اس کا, اور لفظوں میں بھی موجود نہیں, لفظوں سے بھی اس کو ختم کر دیا. تو کون سی صورت میں مبنی ہوگا, دوسری صورت, جب لفظوں سے تو حذف کر دیا لیکن نیت میں موجود ہے, وہ مراد ہے, اس کا ارادہ ہے. اس کے بعد ساتویں قسم جو ہے وہ اسماء کنایات تھے بھائی, اسماء کنایات, اسماء کنایات کہ ایک ہوتا ہے, یاد رکھو صریح, یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا یہ لفظ, تو یاد رکھنا, صریح کا معنی ہوتا ہے صاف لفظوں میں, صاف لفظوں, واضح لفظوں میں ایک بات کرنا. مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے, تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں بھائی زید لمبے قد والا ہے. جو بتانا چاہتا ہوں صاف لفظوں میں بتایا آپ کو کہ زید لمبے قد والا, لیکن اسی بات کو میں کنائے کے انداز میں کہتا ہوں, زید کی قمیص لمبی ہے, اور ارادہ کیا ہے, میں قد بتانا چاہتا ہوں, قمیص نہیں بتانا چاہتا. اگر قمیص ہی بتلا رہا ہوں پھر تو یہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں, پھر یہ صریح بن جائے گا. تو میں مثلا اس کا قد بتانا چاہتا ہوں لیکن لفظ میں دوسرے استعمال کر لیتا ہوں, کیا کہتا ہوں, زید کی قمیص لمبی ہے, اور بتلانا کیا چاہتا ہوں کہ زید کا قد لمبا. تو لفظ میں ذکر کیا قمیص کو اور ارادہ کس کا کیا, قد کا, اس کو کہتے ہیں کنایا, بولنا ایک لفظ اور ارادہ کرنا دوسرے معنی کا, تو اس کو کنایا کہتے ہیں. اور ایک ہے صریح صاف لفظوں میں, جو بات ذکر کی ہے ارادہ بھی اسی کا ہے. میں زید کا قد بتانا چاہتا ہوں تو میں کہتا بھی یہی ہوں زید لمبے قد والا ہے, یا میں صرف قمیص بتانا چاہتا ہوں اور کیا کہتا ہوں زید کی قمیص لمب, تو پھر اس کو صریح کہیں گے, کیونکہ جو لفظ ہے اسی کا معنی ہی مراد ہے. اور اگر معنی دوسرا آپ ارادہ کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے, کنایا. تو یہ جو کنایا ہوتا ہے یہ کبھی بات سے کنایہ کیا جاتا ہے, کبھی عدد سے کنایہ کیا جاتا ہے. مثلا آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں میں نے اس کو اتنے پیسے دیے, لیکن عدد نہیں بتلاتے کتنے پیسے کتنے تھے, تو آپ پھر کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے اتنے پیسے دے دیے, اتنے اتنے, دیکھا عدد نہیں ذکر کیا کہ سو دیے, ہزار دیے, دس ہزار دیے, آپ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے اتنے پیسے دے دیے. تو یہ اتنے اتنے کیا ہے, کنایا ہے, کس سے, عدد سے, وہ عدد آپ نے ذکر نہیں کیا. اسی طرح آپ کسی کو کوئی بات بتلا رہے ہیں, درمیان میں کچھ حذف کر لیتے ہیں کسی وجہ سے, اور یوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسے ایسے کہا, یا کہتے ہیں میں نے اس کو یوں یوں کہا, بھئی کیا کہا, وہ آپ نے نہیں ذکر کیا, تو اس سے کنایا کر لیا, یوں یوں کہہ دیا یا ایسے ایسے کہہ دیا, تو یہ کنایا ہے بات سے. تو یہ کنایات, کبھی کنایا بات سے ہوگا, کبھی کنایا عدد سے. کنایا عدد سے ہو تو اس کے لیے کم اور قضا استعمال کرتے ہیں, और अगर किनाया किससे हो, बाद से हो, तो उसके लिए अरबी में कईता और जईता इस्तेमाल करते हैं। और आठवां जो इसमें गैर मुतमक्किन आपने पढ़ा वो मुरक्कब बिनाई है, जैसे अहादा आशारा। मुरक्कब बिनाई आप पढ़ चुके भाई, मुरक्कब गैर मुफीद के अंदर इन्होंने बतलाया था कि मुरक्कब गैर मुफीद तीन किस्म पर है, या वो मुरक्कब इजाफी होगा, या मुरक्कब बिनाई होगा, या मुरक्कब मनासर्फ होगा। मुरक्कब बिनाई बतलाया था कि दो इसम हो और दरमियान में कोई हर्फ हो और उस हर्फ को हजफ करके दोनों इस्मों को एक बना दें। जैसे अहद आशर असल में क्या था, अहदुन व आशरुन, अहदुन अलग इसम था, आशरुन अलग इसम था और दरमियान में वाव था, फिर इस वाव को हजफ किया और अहद आशरा को जोड़कर एक ही मुरक्कब बना दिया। तो कैसे पढ़ते हैं, अहदा आशारा, और इसको मुरक्कबे बिनाई कहते हैं। बिनाई, बिना का माना है मबनी होना, मबनी होना, तो चूंकि ये मबनी है इसलिए इस मुरक्कब को क्या कहते हैं, मुरक्कबे बिनाई कहते हैं। इसके दोनों जुज मबनी हैं, अहदा की दाल पर भी फतहा पढ़ेंगे और आशारा की रा पर भी फतहा, अहदा आशारा। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं फसल, बिदा के इसम बर दो जरबस मारिफा और नकेरा। अब इसम की तकसीम करने लगे हैं मारिफा और नकेरा के एतबार से। भाई देखिए, चंद सबक कबल मुसन्निफ ने आपको बतलाया था कि अगर जुमले के अल्फाज ज्यादा हों तो सबसे पहले क्या करना, इसम फेल और हर्फ को पहचान लेना, उनको अलग अलग कर लेना कि ये इसम है, ये फेल है और ये हर्फ। जहन में आया, तो अगर जुमले के अल्फाज ज्यादा हों तो वहां आपने चार काम करने हैं। पहला क्या, इसम फेल और हर्फ को अलग अलग कर लो। दूसरा काम क्या करना है, मौरब और मबनी को पहचान लेना है कि कौन कौन सा लफ्ज मौरब है और कौन सा मबनी। तीसरा काम यह करना है कि आपने पहचानना है आमिल कौन है और मामूल कौन, अमल कौन सा लफ्ज कर रहा है और किस लफ्ज पर अमल कर रहा है। तो अमल करने वाला है आमिल, और जिस लफ्ज पर अमल करे उसको रफा नसब या जर दे, उसको क्या कहते हैं, मामूल। तो आपने आमिल और मामूल को पहचानना है। चौथे नंबर पर फिर आपने ये देखना है कि ये लफ्ज आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, कौन सा लफ्ज किसके साथ जुड़ रहा है और किसके साथ नहीं जुड़ रहा, ये आप पहचान लेंगे। जब ये चारों चीजें आपको पता लग गई, इसम फेल हर्फ का भी पता लग गया, मुआरब मबनी का भी पता चल गया, आमिल मामूल का भी पता चल गया, और कौन सा लफ्ज किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये भी जब आपको पता लग गया, तो अब आपको मुस्नद और मुस्नद इलैह की पहचान हो जाएगी कि कौन सा लफ्ज मुस्नद है और कौन सा लफ्ज मुस्नद इलैह है। जब मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों का आपको पता लग गया, तो अब जुमले का सही माना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जुमले के तो दो ही जुज होते हैं, एक मुस्नद होता है और एक मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह किसे कहते हैं, जिसके आसान लफ्जों में जिसके बारे में बात की जाए, और मुस्नद किसे कहते हैं, जो बात की जाए। जैदुन काइमुन, मैंने किसके बारे में बात की, जैद के बारे में, तो जैद हुआ मुस्नद इलैह, और क्या बात की, काइमुन के वो खड़ा है, तो ये हुई खबर, ये हुआ मुस्नद। तो जैदुन यहां हुआ मुबतदा मुस्नद इलैह और काइमुन उसकी खबर, तो मुबतदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। तो ये तफसील इन्होंने बयान की थी कि ये चार चीजें पहचानना। तो फिर इन चार चीजों की पहचान कैसे होगी, इसम फेल और हर्फ को कैसे पहचानेंगे, तो चुनांचे इन्होंने आपको फिर इसम फेल हर्फ की निशानियां बतलाई थी। इसम की 10-11 निशानियां बताई, फेल की भी गालिबन 8 निशानियां वगैरह बताई कि इससे आपको इसम और फेल का पता चल जाएगा और हर्फ को भी आप पहचान लोगे। उसके बाद दूसरा काम क्या बतलाया था, मौरब और मबनी को पहचानना है। तो मबनी क्या क्या होंगे वो इन्होंने आपको बतला दिया, मबनी की पहचान भी करवा दी, उनका जिक्र हो गया। बतलाया इन्होंने कि मबनीउल असल तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, तमाम हरूफ और फेल माजी और फेल अमर हाजिर। और इसम के अंदर बतलाया था कि इसम दो किस्म पर है, एक इसमें गैर मुतमकिन और इसमें मुतमकिन। वही गैर मुतमकिन उसको मबनी कहते हैं, और उसकी 8 किस्में भी आपको बतला दी कि कितनी किस्म पर है, 8 किस्म पर है, वो भी बतला दिया मबनी। और दूसरा साथ क्या था, मौरब। अब मौरब की बहस आगे वो बयान करने लगे हैं। एराब के एतबार से मौरब की किस्में बयान करेंगे आगे मुसन्निफ, तो उस मौरब की किस्में बयान करने से पहले इसम की कुछ खास तकसीमें वो जिक्र करेंगे कि मारिफा किसे कहते हैं, नकेरा किसे कहते हैं, मुजक्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, वाहिद किसे कहते हैं, तस्निया किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कितनी बातें मुसन्निफ ने जिक्र की थी? चार। पहली क्या थी? इसम फेल हर्फ, उसके लिए निशानियां बतला दी। दूसरी बात क्या थी? मौरब और मबनी को पहचानना है, तो मबनी कौन कौन से इसम है वो भी इन्होंने आपको बतला दिया कि तमाम जमीरें, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला वगैरह आठ किस्में हैं, ये मबनियात हैं। अब किसका जिक्र आगे आएगा? मौरब का। लेकिन मौरब के समझने से पहले कुछ खास तकसीमें वो जिक्र करेंगे, कुछ इसम की खास किस्में बतलाएंगे, वो जानना जरूरी है। ये तकसीमें आपके जहन में होंगी तो वो आगे जो मौरब की वो 16 किस्में बयान करेंगे वो फिर आपको सही तौर पर समझ में आएंगी। तरतीब समझ में आ रही है? तो मबनी की किस्में गुजर गई, आप क्या करने लगे हैं? मौरब। लेकिन मौरब से पहले क्या करने लगे हैं? कुछ खास किस्में जिक्र करेंगे इसम की। तो सबसे पहले आपको बतलाएंगे कि इसम जो है वो दो किस्म पर है, या वो मारिफा होगा या नकेरा। तवज्जो है, इधर देखिए भाई, इसम कितनी किस्म पर होगा? दो। या वो मारिफा होगा या नकेरा। याद रखो, मारिफा वो है जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करे, कोई मुअय्यन चीज उससे समझ में आ जाए, उसको कहते हैं मारिफा। और जो गैर मुअय्यन पर दलालत करे उसको कहते हैं नकेरा। नकेरा मसलन आपका एक साथी है, उसका नाम है जैद, उसके मां बाप ने उसका नाम क्या रखा है? जैद। लिहाजा जैसे ही मैं जैद बोलूंगा, देखो फौरन आपके जहन में वो साथी आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो देखा, लफ्ज जैद ने एक मुअय्यन जात पर दलालत कर दी। जैद मैंने जब बोला, कोई अमर आया आपके जहन में? बकर आया? खालिद आया? नहीं। कौन आया? जैद। देखा, एक मुअय्यन जात आपके जहन में आ गई। तो मारिफा किसको कहते हैं? जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे, वो समझ, यानी वो जहन में आए, वो समझ में आ जाए। और नकेरा वो है जो गैर मुअय्यन पर दलालत करे। मसलन मैं आपसे कहता हूं किताब, ये कोई खास किताब जहन में आई? नहीं। हर किताब मेरे सामने जो ये मौजूद है, ये भी किताब। आपके सामने, एक साथी के सामने जो मौजूद है वो भी किताब, दूसरे साथी के सामने जो मौजूद है वो भी किताब, तीसरे साथी के सामने जो मौजूद है उसका भी क्या नाम है? किताब। तो देखो, किताब ये नकेरा है, ये गैर मुअय्यन पर दलालत कर रहा है। दुनिया की हर किताब को आप किताब कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के हर आदमी को आप जैद नहीं कह, दुनिया नहीं बल्कि अपने दर्जे के भी हर आदमी को जैद नहीं कह सकते, बल्कि एक खास मुअय्यन साथी है, उसका नाम क्या है? जैद। तो मारिफा किसे कहते हैं? जो किसी मुअय्यन जात या चीज या माना पर दलालत करे। और नकेरा किसे कहते हैं? जो गैर मुअय्यन पर दलालत करे। अब मारिफा कितने हैं ये आपको बतलाएंगे कि मारिफा की 7 किस्में हैं, मारिफा की 7 किस्में। और नकेरा, अक्सर तुलबा को मारिफा और नकेरा में पहचान मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल आसान है। मारिफा 7 किस्में जहन में रखो, जब कोई इसम आ जाए उसमें से उस देखो कि ये मारिफा की पहली किस्म है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवीं है, छठी है या सातवीं है। अगर इनमें से कोई भी ना हो, समझ जाओ ये क्या है? नकेरा है। तरीका समझ में आया? वैसे तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा, लेकिन जिस तालिबे इल्म को मुश्किल पेश आती है वो मारिफा की ये 7 किस्में हर वक्त जहन में रखे। जो लफ्ज सामने आए उस पर मारिफा की ये 7 किस्में मुंतबिक करने की कोशिश करे, देखिए ये पहली किस्म है या दूसरी है या तीसरी है। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो समझ जाए ये मारिफा नहीं है बल्कि ये नकेरा है। तो अब मारिफा की ये 7 किस्में जिक्र होने लगी हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। देखिए भाई किताब पर, फसल बिदा के इसम बरदो जरबस, जान ले तू के इसम दो किस्म पर है। जरब का माना है किस्म, किस्म बिदा के जान ले तू के इसम बर दो जरबस, इसम दो किस्म पर है, यानी इसम की दो किस्में हैं मारिफा और नकेरा। मारिफा और नकेरा ये दो किस्में। मारिफा आनस्त, ये नून पर जबर पड़नी है, आनस्त भाई, मारिफा आनस्त। मारिफा वो है कि मौजू बाशद बराए चीजें मुअय्यन, कि जो मौजू हो किसी मुअय्यन चीज के लिए, के मौजू बाशद, के मौजू बाशद کہ جو موضوع ہو کس کے لیے؟ معین چیز کے لیے. بھئی موضوع کا کیا معنی؟ موضوع کا معنی ہے مقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا. دیکھو زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے لیے زید کا نام مقرر کیا، یا یوں کہو زید کے لیے اپنے بیٹے کے لیے زید کا لفظ متعین کیا. اس کو وضع کہتے ہیں عربی میں، واو ضاد اور عین. وضع، وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا، متعین کرنا. تو معرفہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ کسی معین چیز کے لیے وضع ہو، یعنی متعین کیا ہوا ہو. جیسے میں نے مثال ذکر کر دی، زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کون سا نام متعین کیا؟ زید. تو کہیں گے اس کے لیے زید کا لفظ موضوع ہے، موضوع کیا گیا ہے، یعنی وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا، اور موضوع جس کو مقرر کیا گیا ہو، متعین کیا گیا ہو. تو کہتے ہیں معرفہ آنست کے موضوع باشد برائے چیزیں معین. معرفہ وہ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو برائے چیزیں معین، کسی معین چیز کے لیے. وہ آن بر ہفت نوعست، اور وہ سات قسم پر ہے. نوع کا بھی کیا معنی؟ قسم. وہ آن بر ہفت نوعست، اور یہ معرفہ جو ہے وہ سات قسم پر ہے. اول مزمرات، پہلی قسم کیا؟ مزمرات، یعنی تمام ضمیریں، تمام ضمیریں. بھئی ضمیریں جو ہے نا، یہ معین ذات پر دلالت کرتی ہیں. جیسے اس کا بیان پیچھے ہو چکا، مثلا میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے زید کی پٹائی کی. اب میں نے، میں کہا، آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے کہ کون مراد ہے؟ متکلم، جو بات کرنے والا وہ مراد ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیف انتم، تم کیسے ہو؟ انتم سے کون مراد ہے؟ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ معلوم ہوا آپ سب جو مخاطب ہیں میرے، وہ آپ لوگ مراد ہیں. تو ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ کسی معین ذات پر دلالت کرتی ہے. جب میں انا بولوں گا تو اس سے میں ہی مراد ہوں گا، زید یا عمر مراد نہیں. اور جب میں انتم کہوں گا تو انتم سے آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہو آپ ہی مراد ہیں، کہیں دور بیٹھے ہوئے لوگ مراد نہیں. اور غائب، غائب کی ضمیر، غائب کی کون سی ضمیر ہے جو کس پر دلالت کرتی ہے؟ ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. تو غائب کی ضمیر بھی کسی معین پر دلالت کرے گی. تو متکلم کی ضمیر بھی کسی متعین پر دلالت کرے گی، جو بات کرنے والا ہے. اور مخاطب کی ضمیر جو اس کے سامنے موجود ہیں، جن کو وہ خطاب کر رہا ہے، جن سے وہ بات کر رہا ہے. اور غائب بھی کسی معین غائب پر دلالت کرے گا جس کا پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید میرا گہرا دوست ہے، وہ کل میرے پاس آیا تھا. دیکھو کس کا ذکر میں نے کیا؟ زید. اور پھر آگے میں نے یہ نہیں کہا کہ زید میرے پاس آیا تھا، بلکہ میں نے کہا وہ میرے پاس آیا تھا. یہ وہ کیا ہے؟ اردو میں ضمیر ہے. اور یہ کسی معین پہ دلالت کر رہا ہے یا غیر معین پر؟ معین. یہاں وہ سے زید ہی مراد ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہوا ہے ابھی، اس سے عمر یا بکر یا خالد وغیرہ مراد نہیں ہے. تو ضمیر وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرے، معین ذات پر. پھر ان میں یاد رکھو تین قسم کی ضمیریں ہو گئیں، ایک متکلم والی، ایک مخاطب والی، اور ایک غائب والی. یہ تین قسمیں ہیں ضمیروں کی. پھر ان کے اندر یا مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع، یا مذکر ہوگا یا مؤنث. تو یہ جو تین قسمیں ہیں، ان میں بھی سب سے زیادہ معرفہ، اونچے درجے کا معرفہ، وہ متکلم کی ضمیر ہے. یہ تینوں ضمیریں کیا ہیں؟ معرفہ. تینوں ضمیریں کیا ہیں؟ لیکن ان میں بھی سب سے اونچا درجہ وہ متکلم کی ضمیر کا ہے. یعنی انا بھی معرفہ، انتا بھی معرفہ، ہوا بھی معرفہ. لیکن انا، انتا اور ہوا، ان کے اندر سب سے زیادہ معرفہ، جس میں سب سے زیادہ تعریف ہے، وہ انا ضمیر ہے، متکلم کی. کیونکہ معرفہ کا معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو. मारिफा वो है जिसकी आपको पहचान है। मैंने कहा जैद, आप फौरन साथी आपके जहन में आ गया क्योंकि आपको उसकी पहचान है, वो मुतायन है। जब वो मुतायन है मालूम हो आपको उसकी पहचान है। तो मारिफा को मारिफा क्यों कहते हैं? मुआयन पर। और आसान लफ्जों में क्या कहो? क्योंकि हमें उसकी पहचान होती है, जिक्र करते ही हम समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है, क्या मुराद है। तो मारिफा को मारिफा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इंसान को पहचान होती है, और इंसान को सबसे ज्यादा अपनी पहचान है मुखातब और गायब सबके मुकाबले में। हर शख्स सबसे ज्यादा किसको जानता है? अपने आप को जानता है। तो इसलिए देखो मुतकल्लिम जो है, मुतकल्लिम की जमीर वो उसमें तारीफ सबसे ज्यादा, वो सबसे बड़ा, सबसे आला दर्जे की मारिफा। दूसरे दर्जे पर जो मुखातब है उसका दर्जा है क्योंकि मुखातब आपके सामने है। और तीसरा दर्जा है गायब का भाई, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, आपकी नजरों के सामने नहीं है। तो सबसे आला दर्जा किसका? जमीरों में मुतकल्लिम का। दूसरा दर्जा मुखातब की जमीरें, और तीसरे नंबर पर गायब की जमीरें हैं भाई। तो कहते हैं अव्वल मुजमरात, पहली किस्म जो है मारिफा की जमीरें हैं। दुवम आलाम, आलाम जमा है आलम की, आलम, और आलम नाम को कहते हैं। दूसरे दर्जे पर जो मारिफा है वो नाम है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया जैद के मां बाप ने जैद का क्या नाम रखा? जैद। देखो ये उसका आलम है, नाम है। इसी तरह आपका नाम आपके वालिदैन ने कुछ रखा होगा, दूसरा साथी है उसका नाम वालिदैन ने कुछ रखा होगा, तीसरा साथी है उसका वालिदैन ने कुछ नाम रखा होगा, ये सब आलम है, ये आपके नाम हैं। अब जब भी आपका नाम लिया जाएगा आप ही की सूरत जहन में आएगी साथियों के, किसी और की सूरत जहन में नहीं आएगी। तो ये है आलम। आलम का क्या माना? नाम। नाम तो कहते हैं दुवम आलाम, दूसरे नंबर पर आलाम यानी आलम है। चूं जैदुन व आमरुन, जैसे जैद और अमर, जैद किसी का नाम है, अमर भी किसी का नाम है, तो ये दूसरे दर्जे वाले मारिफा हुए। सेवम अस्माए इशारात, तीसरे नंबर पर अस्माए इशारात हैं। अस्माए इशारात, अस्माए इशारा भी किसी मुअय्यन चीज पर दलालत के लिए आते हैं। मसलन देखो मेरे सामने ये किताब मौजूद है, मैं इसकी तरफ इशारा करके कहता हूं हाजा, आप समझ गए कि नहीं समझे कि इससे क्या मुराद है? सब समझ गए। मैंने किताब नहीं कहा, मैंने सिर्फ हाजा उस किताब की तरफ उंगली से या हाथ से इशारा किया है, तो आप समझ गए कि हाजा से ये वाली किताब मुराद है। अगर मैं किसी कलम की तरफ इशारा करूं और कहूं हाजा, आप फौरन समझ जाते हैं कि हाजा से क्या मुराद है, ये कलम मुराद है, किताब मुराद नहीं। तो देखो इसमें इशारा भी किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करता है। मैंने हाथ से इशारा किया अपनी किताब, अपनी किताब की तरफ, तो जिस किताब की तरफ इशारा किया वही मुराद है, जो आपके सामने किताब मौजूद है वो वाली किताब मुराद नहीं है। तो इसमें इशारा भी क्या करता है? मुअय्यन चीज पर दलालत करता है। चहारुम अस्माए मौसूला, चौथी किस्म जो है वो अस्माए मौसूला है मारिफा की। अस्माए मौसूला आप पढ़ चुके, इसमें मौसूल वो है कि जिसके साथ सिला मिलाना पड़ता है फिर ही उसका माना समझ में आता है। जैसे अल्लजी, वो जो के, अगर मैं कई दफा भी कहूं अल्लजी वो जो के, अल्लजी वो जो के, आप कहेंगे भाई हमें तो बात नहीं समझ में आ रही, आप किसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे जब मैं उसका सिला लाऊंगा, अल्लजी जाराबा का, वो जिसने आपकी पिटाई की थी, अब आप समझ गए किस आदमी की बात हो रही है। मालूम है कोई मुतायन आदमी है जिसने आपकी पिटाई की थी। तो यह अस्माए मौसूला है। फिर दोहराओ, पहली किस्म कौन सी मारिफा की? तमाम जमीरें। दूसरे आलम भाई, तीसरा अस्माए इशारा, चौथा मारिफा अस्माए मौसूला। आगे देखिए, व इन दो किस्म रा मुबहमात गोयंद, और इन दो किस्मों को मुबहमात कहते हैं। इन दो किस्मों को मुबहमात कहते हैं। कौन से दो? आखिरी दो। आखिरी दो कौन से हैं? आखिरी दो अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला जो अभी गुजरे। कहते हैं ये जो आखिरी दो अभी अभी गुजरे हैं, इन दोनों को मुबहमात कहते हैं। आपके जहनों में आएगा भाई अभी आपने बताया ये मारिफा है, और मारिफा वो है जो किसी मुतायन पर दलालत करे, और मुबहम तो कहते हैं गैर मुतायन को। मुबहम है कोई चीज आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कहते हैं? मुबहम है। तो ये तो इसकी जिद हुआ भाई, ये मुतायन भी हैं और मुबहम भी हैं। मुतायन बाई लिहाज कि ये किसी मुतायन जात पर क्या करते हैं, दलालत करते हैं, लेकिन मुबहम ये इनको मुबहमात अस्मा इशारा और अस्मा मौसूला को इस एतबार से कहते हैं कि इसमें इशारा, जब मैंने कहा हाजा और किसकी तरफ इशारा किया, किताब की तरफ, तो आप समझ गए कि इससे क्या मुराद है, किताब। तो याद रखिए हाजा हुआ इशारा और ये जो किताब है ये है मुशारुन इलैही, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहते हैं, मुशारुन इलैही, यानी इसकी तरफ इशारा किया गया है, मुशारुन इशारा किया गया है इलैही इस चीज की तरफ, तो जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहते हैं, मुशारुन इलैही। तो इसमें इशारा को मुबहम कहते हैं क्योंकि यह मोहताज है मुशारुन इलैह का। जब तक कोई चीज मुशारुन इलैह नहीं होगी आपको हाजा का माना समझ में नहीं आएगा। यही हाजा, हाजा बोलकर अगर मैं किताब की तरफ इशारा करूं तो आप समझ जाते हैं कि मुशारुन इलैह किताब है, तो हाजा से क्या मुराद है, किताब। और अगर यही हाजा का लफ्ज बोलूं और मैं कलम की तरफ इशारा करूं तो आप समझ जाते हैं कि मुशारुन इलैह क्या है, कलम। मालूम हुआ हाजा से क्या मुराद है, कलम मुराद है। इसी हाजा के जरिए अगर मैं दीवार की तरफ इशारा करूं तो आप समझ जाते हैं कि हाजा से क्या मुराद है, दीवार, और मुशारुन इलैह यहां पर क्या है, दीवार। तो इसमें इशारा मोहताज है मुशारुन इलैह का। किसका मोहताज? अगर आप मुशारुन इलैह नहीं लाते तो हाजा का माना ही समझ में नहीं आएगा। देखो अब मैं बगैर कोई इशारा किए हुए आपसे एक सामने कहता हूं हाजा, कुछ समझ में आया आपको? नहीं। आप कहेंगे भाई मुशारुन इलैह क्या, पता तो चले। तो या तो वो कभी कभार हाथ हाथ से इशारा कर दिया जाता है, कभी लफ्जों में भी मुशारुन इलैह ले आते हैं, हाजल किताब ये वाली किताब, या हाजल कलम ये वाला कलम। तो कभी लफ्जों में वो मुशारुन इलैह ले आते हैं, कभी उसकी तरफ हाथ या उंगली से इशारा कर दिया जाता है। तो इसमें इशारा कब हमें समझ में आएगा, जब मुशारुन इलैह का पता हो। अगर मुशारुन इलैह का पता नहीं तो इसमें इशारा भी समझ में नहीं आएगा। और मुशारुन इलैह का पता कैसे चलेगा, हाथ या उंगली से इशारा किया जाए या लफ्जों में उसको बाकायदा जिक्र किया जाए। हाजल किताब, जी मुशारुन इलैह क्या है, किताब है, लफ्जों से आपको पता चल गया। और एक मैं कहता हूं हाजा, किताब की तरफ उंगली से इशारा कर रहा हूं, हाजा, अब मुशारुन इलैह आपको समझ में आ गया। तो मुशारुन इलैह के समझ आने की दो सूरतें हैं, या उसकी तरफ हाथ या उंगली से इशारा किया जाए या उसको लफ्जों में जिक्र किया जाए। तो इसमें इशारा किसका मोहताज, मुशारुन इलैह का। उसके बगैर इसका माना समझ में आएगा
नहीं,
कि जब तक मुशारुन इलैह का पता नहीं होगा तब तक इसमें इशारा की तायीन नहीं होगी कि इससे क्या मुराद है। इसी तरह इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल का माना बगैर सिले के समझ में नहीं आएगा। जब तक उसके साथ सिला नहीं मिलाएंगे उसका माना समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं अल्लजी, वो जो के, आपको पता चला किसकी बात कर रहा हूं? नहीं। वो जो के, ये तो हर एक पे सादिक आ सकता है। जिसने आपकी पिटाई की थी वो, उसके लिए भी मैं अल्लजी बोल सकता हूं। वो जिसने आपका इकराम किया था और आपको चाय पिलाई थी उसके, वो भी अल्लजी है उसके। तो इसमें मौसूल से कौन मुराद है, जब तक आगे सिला नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूं अल्लजी जाराबा का, अब आप समझ गए किसकी बात हो रही है, जिसने आपकी पिटाई की थी। और अगर इसके बजाय मैं यूं कह दूं अल्लजी अकरमा का, वो जिसने आपका इकराम किया था, अब आप समझ गए कि फलां शख्स की बात हो रही है। तो देखो सिला बदला तो उसका माना भी बदल गया कि इससे मुराद कौन है। तो इसमें मौसूल का माना कब समझ में आएगा, जब उसके साथ सिला मिलेगा, और बगैर सिले के ये मुबहम है, इसका पता ही नहीं चलेगा। जैसे इसमें इशारा बगैर मुशारुन इलैह के मुबहम है, तो अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला इनको क्या कहते हैं, मुबहमात। मुबहमात क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इशारा किसका मोहताज, मुशारुन इलैह का, और इसमें मौसूल किसका मोहताज, सिले का मोहताज है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन दो किस्म रा मुबहमात गोयंद, और इन दो किस्मों को मुबहमात कहते हैं। पंजुम मारिफा बनीदा चू या रजुलू, जैसे या रजुलू मारिफा बनीदा, निदा कहते हैं आवाज देना किसी को, निदा। मारिफा बनिदा, आवाज देकर किसी लफ्ज को मारिफा बनाया जाए। भाई देखिए, अरबी में आवाज देने के लिए या का लफ्ज अमूमन इस्तेमाल करते हैं, या और भी अल्फाज हैं, वो आगे आ जाएंगे, अभी इतना याद रखें। तो निदा के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं? या का लफ्ज, या जैदु ए जैद, या बकरु ए बकर, या अमरु ए अमर। देखो, आवाज देने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। तो अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं? या। तो इसको कहते हैं निदा। निदा, आप दूसरे को क्या कर रहे हैं? आवाज दे रहे हैं। निदा, और निदा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या। या याद रखो, ये जो या है ना, या और इसी तरह अलिफ लाम, अलिफ लाम, ये जब किसी लफ्ज पर दाखिल हो जाए तो उसको मारिफा बना देते हैं। या हरफे, या हरफे निदा जो है, या जब किसी लफ्ज पर दाखिल हो जाए तो उसको क्या बना देता है? ये तो ये उस लफ्ज को मारिफा बना देता है। इसी तरह अलिफ्लाम किसी लफ्ज पर दाखिल हो जाए तो अलिफ्लाम उसको मारिफा बना देता है। जैसे रजुल है नकेरा, नकेरा, रजुल का क्या माना? कोई आदमी या एक आदमी। तो मसलन मेरे सामने जैद खड़ा है, मैं कह सकता हूं तो वो भी क्या है? रजुल। बकर खड़ा है, वो भी क्या है? रजुल। रजुल का माना आदमी, मर्द, मर्द। जैद भी क्या है? रजुल। बकर है, वो भी क्या है? रजुल। आमर है, वो भी क्या है? रजुल। खालिद भी क्या है? रजुल। तो रजुल नकेरा है, और ये हर हर रजुल पर बोला जा सकता है। जैद, अमर, बकर, खालिद, दुनिया के जितने रजुल हैं उन सब पर ये रजुल का लफ्ज बोला जा सकता है। लेकिन इस पर जब मैं अलिफ लाम ले आऊं, अर रजुल, अब तर्जमा होगा वो आदमी, मन हो किसी मुअय्यन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो अब ये मुतअय्यन हो गया, किसी मुअय्यन पर दलालत करेगा। तो और याद रखो, इसके लिए फिर अमूमन वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अर रजुल का कोई आपसे कहे तर्जमा करो, आप क्या तर्जमा करेंगे? वो आदमी, वो आदमी। मालूम हो कोई मुअय्यन आदमी मुराद है। मसलन मैं आपसे कहता हूं, जा अनी रजुलन अमसी, कल मेरे पास एक आदमी आया था। जा अनी रजुलन अमसी, मैंने नकेरा जिक्र किया, रजुलन कोई आदमी आया था कल मेरे पास। आप उस आदमी को नहीं जानते, ना आपको उसके नाम का पता है, ना सूरत का पता है, ना कपड़ों का पता है, किसी चीज का नहीं पता। लेकिन एक दफा जब मैंने जिक्र कर दिया, अब वो मुतअय्यन हो गया। और फिर मैं आगे आपसे कहता हूं, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया। क्या कहता हूं? मैंने उस आदमी का इकराम किया। आप समझ गए कि नहीं समझ गए किसकी बात कर रहा हूं? कौन सा आदमी? वो जो कल, गुज़श्ता कल आया था। तो जब एक दफा चीज को जिक्र कर दिया जाए तो वो मुतअय्यन हो जाती है, चाहे आपने उसको देखा हो चाहे न देखा हो, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले क्या कहा? जानी रजुलन अमसी, कल मेरे पास एक आदमी आया था। कौन था? आपको नहीं पता, आपको नाम का भी नहीं पता, आपको कपड़ों का भी नहीं पता, आपको सूरत का भी नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद अगला ही जुमला मैं यूं कहता हूं, फिर मैंने उस आदमी का इकराम किया। उस आदमी, किसी खास आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूं। और आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप समझ गए कि किस आदमी की बात हो रही है? जो गुज़श्ता कल आया था। तो एक दफा जब एक नकेरा जिक्र हो जाए तो वो मुतअय्यन हो जाता है, और उसकी तरफ जब इशारा किया जाए तो दूसरा सुनने वाला समझ जाता है कि इसकी बात हो रही थी, क्योंकि अभी इसका जिक्र गुजरा है। तो जब मैं मैं अरबी में यूं कहूंगा, जा अनी रजुलन अमसी, अमसी का माना गुज़श्ता कल, कि मेरे पास एक आदमी आया था गुज़श्ता कल। फअकरमतु, तो मैंने इकराम किया। अर रजुला, अब अलिफ लाम लेकर आऊंगा, अब रजुला नहीं कहूंगा बल्कि क्या लाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं क्या बतलाना चाहता हूं, अगर मैं कहूं ना फअकरमतु रजुलन, तो माना हो जाएगा मैंने किसी आदमी का इकराम किया। कल मेरे पास एक आदमी आया था, मैंने किसी आदमी का इकराम किया। तो हो सकता है वही हो सकता है कोई और हो, कोई पता नहीं चल रहा यहां पर कि इकराम उसी आदमी का किया या किसी और आदमी का किया है। लेकिन जब मैं कहूंगा, मैं बताना चाहता हूं मैंने उसी आदमी का इकराम किया, तो फिर क्या लेकर आऊंगा? अलिफ लाम लेकर आऊंगा, अर रजुल, मारिफा उसको लेकर आऊंगा। और कैसे कहूंगा? अकरम तो अर रजुला, क्या तर्जमा होगा? मैंने उस आदमी का इकराम किया। कोई आपसे कहेगा कि ये उसका लफ्ज आप कहां से ले आए, तो आप क्या जवाब देंगे? ये अलिफ लाम का मैं तर्जमा कर रहा हूं। अलिफ लाम के जरिए क्या होता है, किसी चीज की तरफ इशारा होता है। मालूम हो अर रजुल से हर आदमी मुराद नहीं, कोई खास आदमी मुराद है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो अलिफ लाम से कोई लफ्ज क्या बन जाता है, मारिफा बन जाता है। और मारिफा किसे कहते हैं, जो किसी मुअय्यन जात पे दलालत करे। और अर रजुल से हर रजुल मुराद है या कोई मुअय्यन रजुल है मुराद है? मुअय्यन, इसीलिए यह मारिफा है, एक मुअय्यन जात पर दलालत कर रहा है। तो जैसे अलिफ लाम किसी लफ्ज पर दाखिल हो वह मारिफा बन जाता है, इसी तरह अगर या हरफ निदा ये किसी इसम पर दाखिल हो वो भी मारिफा बन जाता है। इसी रजुल पर या दाखिल कर दो, या रजुलो, आपके सामने एक आदमी गुजर रहा है भाई, आपको उसके नाम का पता नहीं है, आप उसको पहचानते नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप उसको आवाज देते हैं या रजुलो, ए आदमी, तो ये रजुल मारिफा है क्योंकि इस पर आपने या हरफ निदा दाखिल कर दी। और या हरफ निदा भी अलिफ लाम की तरह क्या फायदा देती है, लफ्ज को क्या बना देती है, मारिफा। तो अर रजुल क्या था, मारिफा। तो या रजुल में भी रजुल क्या है, मारिफा। आप कहेंगे कैसे मारिफा है, कैसे मुतायन हो गया? भाई देखो, एक आदमी आपके सामने गुजर रहा है, आपने क्या कहा, या रजुलो, ए आदमी जी, किसी मुतायन को कहा या गैर मुतायन को कहा? मुतायन आदमी आपके सामने गुजर रहा है, मुतायन को निदा दे रहे हैं, तो या रजुलो, इसमें रजुल क्या हो चुका, मारिफा हो चुका है। ये मारिफा है क्योंकि या भी लफ्ज को मारिफा बनाता है, जैसे अलिफ लाम लफ्ज को क्या बनाता है, मारिफा। या हरफे निदा कैसे मारिफा बनाता है किसी लफ्ज को, क्योंकि इसमें निदा किसी मुतायन को होगी। अगर निदा गैर मुतायन को है तो फिर ये मारिफा नहीं। अगर निदा गैर मुतायन को हो फिर या दाखिल हो जाए, फिर भी लफ्ज नकेरा का नकेरा ही रहेगा। जैसे नाबीना है, नाबीना, अब वो नाबीना है, किसी जगह खड़ा है, उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो वो कहता है या रजुलन, ए आदमी, आवाज देता है, तो क्या वो किसी मुतायन को आवाज दे रहा है या जो भी करीब से गुजर रहा हो उसको आवाज दे रहा है? जो भी करीब हो वो सारे उसके मुनादा बन जाएंगे। तो जब वो कहता है या रजुलन, तो अब मारिफा नहीं, क्योंकि वो किसी मुअय्यन को आवाज नहीं दे रहा। तो बस ज़ाब्ता याद रखें, जब या के जरिए किसी मुअय्यन को निदा दी जाए तो वो मारिफा होगा, गैर मुअय्यन को निदा दी जाए तो वो नकेरा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये नाबीना की तो वैसे मिसाल दी जाती है, यानी कि नाबीना ही कहेगा तभी या रजुलन नकेरा रहेगा। आप भी इस तरह कर सकते हैं, आप भी जब किसी मुअय्यन को या के साथ निदा देंगे वो क्या बन जाएगा, मारिफा, और किसी गैर मुअय्यन को निदा देंगे वो क्या होगा, वो नकेरा ही रहेगा। तो कहते हैं पंजुम मारिफा बन निदा, पांचवां जो है मारिफा, मारिफा बन निदा, वो जो निदा की वजह से मारिफा हो, चूं या रजुलो, जैसे या रजुलो। शशुम मारिफा ब अलिफ लाम, छठी किस्म है जो मारिफा हो अलिफ लाम की वजह से, चूं अर रजुलो, इस पर भी क्या आया, अलिफ लाम, और अलिफ लाम भी किसी लफ्ज को क्या बना देता है, मारिफा। हफ्तों मुजाफ बयके अजीनहा, सातवीं किस्म मारिफा की, मुजाफ, जो मुजाफ हो, जो मुजाफ हो बयके एक, किसी एक को, अजीनहा, इनमें से। असल में क्या था, अज ईन हा, ईन का क्या माना, ये अज का माना से, और फारसी में जमा के लिए हा मिलाते हैं, फारसी में जमा के लिए हा लफ्ज के साथ जोड़ते हैं, ये एक जमा बनाने का तरीका है। किताब का माना एक किताब, और आप कहना चाहते हैं कई किताबें, तो आप कहेंगे किताब हा। कलम का माना एक कलम, और आप बतलाना चाहते हैं कई कलम, तो कैसे कहेंगे, कलम हा। तो यहां पर भी इसी तरह अजीन हा, ये सब तर्जमा क्या होगा, ये सब, कि मुजाफ ब यके अजीन हा, वो जो मुजाफ हो इनमें से किसी एक की तरफ, इनमें से किसी एक की तरफ, कौन से, ये जो पहले छह किस्में गुजरी, लेकिन इन छह में से ये मारिफा ब निदा को निकाल दें, बाकी जो पांच किस्में रह गईं इनकी तरफ जो मुजाफ होगा वो भी मारिफा बन जाएगा। पहली किस्म क्या थी, मुजमरा जमीरें, याद रखो जो लफ्ज जमीर की तरफ मुजाफ होगा वो भी मारिफा बन जाएगा। अगली किस्म क्या थी? आलम, नाम, नाम की तरफ जो मुजाफ होगा वो भी क्या बन जाएगा? मारिफा। अगली किस्म क्या थी? अस्मा इशारा, अस्मा इशारा की तरफ जो मुजाफ होगा वो भी क्या बन जाएगा? मारिफा। उससे अगली किस्म अस्मा मौसूला, इसमें मौसूल की तरफ जो मुजाफ होगा वो भी मारिफा बन जाएगा। उससे अगली किस्म मारिफा बनिदा, उसको छोड़ दें। और छठी किस्म क्या है? मारिफा ब अलिफो लाम, मारिफा ब अलिफो लाम, उसकी यानी जो मुआरफ बिल्लाम है जिस पर अलिफ लाम आ गया, जैसे अर रजुल, इसकी तरफ जो मुजाफ होगा वो भी क्या बन जाएगा? मारिफा। तो मारिफा ब निदा को छोड़कर बाकी जो पांच किस्में गुजर चुकी हैं अब तक, उनमें से किसी की तरह जो मुजाफ हो जाए जो लफ्ज, वो भी क्या बन जाता है? मारिफा। देखो मिसालों से बात समझ में आएगी। मसलन गुलाम, भाई गुलाम, यह किताब कह लो, किताब, किताब नकेरा है। मेरे सामने जो मौजूद है यह भी क्या है? किताब। इसको भी कह सकते हैं किताब। आपके सामने, हर तालिब इल्म के सामने जो मौजूद वो भी क्या है? किताब। तो जब मैंने लफ्ज़ किताब कहा, ये हर हर किताब पर बोला जा सकता है। लेकिन जब इसकी इजाफत में कर दूं जमीर की तरफ, मसलन किताबी, मेरी किताब, अब देखो सिर्फ कौन सी किताब, इस कौन सी किताब पर यह बोला जाएगा? जो मेरी किताब है उस पर यह लफ्ज बोला जाएगा, जो आपकी किताब है उस पर यह लफ्ज नहीं। तो ये इजाफत की वजह से, या आप कहते हैं किताबुहू, हा जमीर है ना, किताबुहू क्या तर्जमा? उसकी किताब। देखो कोई मुतायन किताब मुराद है, किताबी मेरी किताब, देखो कोई मुतायन किताब मुराद है, किताबू का आपकी किताब, देखो कोई मुतायन किताब मुराद है। तो जब कोई इसम जमीर की तरह मुजाफ हो जाए वो भी क्या बन जाता है? मारिफा। तो किताब वैसे तो नकेरा था, लेकिन जब इसकी इजाफत जमीर के साथ कर दी, जमीर के साथ इसको जोड़ दिया, जैसे किताबी या किताबू हू या किताबू का, तो ये क्या बन चुका? अब मारिफा। अब ये किसी मुआयन किताब पर दलालत कर रहा है। या इसकी इजाफत कर दो किसी नाम की तरफ, जैसे जैद अमर बकर, जैद की तरफ इजाफत कर दो, किताबु जैदिन क्या तर्जमा? जैद की किताब, देखो मारिफा बन गया, मालूम हुआ जैद की किताब मुराद है, बकर या खालिद की किताब मुराद नहीं। तो ये देखो ये मारिफा बन गया। ये इसमें इशारा की तरफ इजाफत कर दो, किताबु हाजा, मसा हाजा में आपकी एक तालिब इलम की तरफ इशारा करता हूं, हाजा से कौन मुराद? तालिब इलम की तरफ मैं हाथ से इशारा कर रहा हूं और क्या कहता हूं? किताबु हाजा, इसकी किताब, देखो मालूम हुआ कोई मुतायन किताब मुराद है, गैर मुतायन मुराद नहीं। तो इसमें इशारा की तरफ भी जब इजाफत कर दी जाए तो वो लफ्ज मारिफा बन जाता है। या अल्लजी की तरफ मैं इजाफत कर देता हूं, किताबुल्लजी जाराबा का, वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी उसकी किताब। देखा अब ये भी क्या है? किसी मुतायन किताब पर दलालत कर रहा है। तो इजाफत किसकी तरफ कर दो? जमीर की तरफ, या आलम की तरफ, या अस्मा इशारा, या इसमें मौसूल, तो वो लफ्ज क्या बन जाता है? मारिफा। इसी तरह अगर मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ इजाफत कर दो, अर रजुल, रजुल अर रजुल का क्या तर्जमा? वो आदमी, किसी कोई मुअय्यन मर्द मुराद है। अब इसके साथ मैं किताब का लफ्ज जो नकेरा है जोड़ता हूं और इजाफत करता हूं, किताबुर रजुली, उस आदमी की किताब। अब ये किताब का लफ्ज क्या बन गया? मारिफा बन गया। क्या बन गया? मारिफा बन गया। हां, मारिफा बन निदा जो होता है या रजुल, उसकी तरफ इजाफत नहीं हो सकती। यहां तक बात समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं हफ्तों मुजाफ बयके अजीन हा, सातवीं किस्म वो है जो मुजाफ हो इन सब में से किसी एक की तरफ, चूं गुलाम हो, क्या तर्जमा होगा? उसका गुलाम जी, किसकी तरफ इजाफत हुई? जमीर की तरफ। वह गुलाम जैदिन क्या तर्जमा होगा? जैद का गुलाम जी, किसकी तरफ इजाफत हुई? आलम की तरफ। वह गुलाम हाजा क्या तर्जमा? इस का गुलाम जी, किसकी तरफ इजाफत हुई? इसमें इशारा की तरफ। वह गुलामुल्लदी इंदी, गुलाम उस आदमी का ईन दी जो मेरे पास है, वो आदमी जो मेरे पास खड़ा है उसका गुलाम जी, तो गुलाम उल्लदी इंदी जी, ये गुलाम की इजाफत किसकी तरफ है, इसमें मौसूल की तरफ, और इंदी ये क्या है, उसका सिला है, मौसूल के लिए हमेशा क्या चाहिए, सिला, तो ये सिला है, तो ये गुलाम का लफ्ज जब अल्लजी की तरफ मुजाफ हुआ तो मारिफा बन गया। वह गुलाम उर रजुली, देखो गुलाम की इजाफत हो गई अर रजुल की तरफ, क्या तर्जमा होगा, ये तर्जमा नहीं करना आदमी का गुलाम, नहीं नहीं, तो लबा अमूमन ये तर्जमा करते हैं गुलाम उर रजुल आदमी का गुलाम, नहीं भाई अलिफ लाम का भी तर्जमा करो, कैसे कहेंगे गुलाम उर रजुली उस आदमी का गुलाम। तो देखो इनमें से ये जो पांच थे इनमें से इनकी तरफ जो नकेरा मुजाफ हो जाए वो भी मारिफा बन जाता है। वह नकेरा आनस्त के मौजू बाशद बराए चीजें गैर मुआयन, और नकेरा वो है कि जो मौजू हो जिसको मुतायन किया गया हो, बराए चीजें गैर मुआयन किसके लिए, गैर मुआयन चीज के लिए जिसको वजा किया गया हो, जैसे किताब, ये दुनिया की हर किताब पर यह लफ्ज बोला जा सकता है, लेकिन किताब ज़ैदिन क्या ये दुनिया की हर किताब पर बोल सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ जैद की किताब पर बोल सकते हैं, किसी और किताब पर नहीं। इसी तरह गुलाम, गुलाम का लफ्ज दुनिया के हर गुलाम पर बोल सकते हैं, लेकिन गुलामी मेरा गुलाम ये हर गुलाम पर नहीं बोल सकते। तो नकरा आनत के मौजू बाशद बराए चीजें गैर मुआयन, और नकरा वो है जो मौजू हो किसी गैर मुआयन चीज के लिए, चूं रजुलन जैसे रजुल भाई मर्द, ये कोई भी मर्द हो उसको आप उस पर ये लफ्ज बोल सकते हैं। वह फारसुन, फरस घोड़े को कहते हैं, कोई भी घोड़ा हो आप उसको फरस कह सकते हैं, लेकिन फारसु जैदिन जैद का घोड़ा, अब ये लफ्ज हर घोड़े पर नहीं बोल सकते, सिर्फ जैद के घोड़े पर बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, मारिफा की कितनी किस्में हो गई, सात किस्में, अव्वल तमाम जमीरें, दूसरे नंबर पर आलम, तीसरे नंबर पर अस्माए इशारा, चौथे नंबर पर अस्माए मौसूला, पांचवें नंबर पर मारिफा बा निदा, वो जो निदा की वजह से मारिफा बने, छठे नंबर पर मारिफा बा अलिफो लाम जिस पर अलिफ लाम आए, और सातवें नंबर पर जो इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ हो। अब शुरू में भी मैंने जिक्र किया, उमूमन तो लबा को पता नहीं चलता कि ये लफ्ज मारिफा है या नकेरा है, तो अब आपने ये मारिफा जहन में रखने हैं, जब मारिफा जहन में होंगे तो आप मारिफा और नकेरा को आराम से पहचान लेंगे। कोई भी लफ्ज आया आपके सामने किताब में तो आप उसमें गौर करें कि ये मारिफा की सात किस्मों में से कोई किस्म तो नहीं, अगर उनमें से है तो मालूम हुआ यह मारिफा, अगर उनमें से नहीं तो यह क्या है, नकेरा। तो जब भी कोई लफ्ज आए गौर करो कि यह जमीर तो नहीं, फिर दूसरी किस्म ये किसी का नाम तो नहीं, फिर ये देखो कि ये इसमें इशारा तो नहीं, और क्या देखो इसमें मौसूल तो नहीं, और मारिफा बनिदा तो नहीं, इस पर हरफ निदा तो नहीं दाखिल, और ये देखो कि इस पर अलिफ्लाम तो दाखिल नहीं, और या इनमें से इन पांच में से किसी एक की तरफ ये मुजाफ तो नहीं हो रहा, आगे इससे आगे मुजाफिले तो नहीं आ रहा, अगर इन में से नहीं तो मालूम हुआ वो नकेरा है। और बिल्कुल आसान है, एक दो चार दफा आप इनको याद करके दोहराएंगे तो आप फौरन जल्दी से पहचान सकेंगे कि ये लफ्ज मारिफा है या नकेरा है भाई। फिर इनमें से याद रखना, ये जो सात है ना, सात मारिफा, इनमें से चार तो वजा के एतबार से मारिफा है, उनकी जात ही मारिफा है, पहले चार जमीर, इसी तरह नाम आलम, इसी तरह इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये है ही क्या मारिफा, जमीर है ही क्या मारिफा, शुरू से ही मारिफा है। आलम जो नाम होता है वो शुरू से ही क्या होता है मारिफा, जब किसी ने किसी का नाम, बच्चे का नाम रखा तो देखो मारिफा है। इसमें इशारा, उसको बनाया ही किसके लिए गया है, मारिफा के लिए, और इसी तरह इसमें मौसूल, उसको भी बनाया ही किसके लिए गया, मारिफा यानी किसी मुअय्यन जात के लिए। जबकि अगले तीन जो हैं, आखिरी तीन, वो खुद मारिफा नहीं, हां उस पर या हरफे निदा आ जाए तो वो मारिफा बन जाएगा। खुद तो वो नकेरा है, रजुल तो खुद नकेरा है, लेकिन या आ गया तो या रजुलू ये क्या बन गया मारिफा। फिर इसी तरह रजुल तो नकेरा है लेकिन इस पर अलिफ लाम आ गया अर रजुल ये क्या बन गया मारिफा बन गया। इसी तरह मुजाफ गुलाम, गुलाम तो नकेरा है लेकिन इसकी इजाफत हो गई इन पांच में से किसी एक की तरफ ये मुजाफ बना और आगे मुजाफिले आ गया तो ये क्या बन गया मारिफा बन गया। तो पहले चार तो हैं ही क्या मारिफा और अगले तीन, अगले तीन खुद नकेरा लेकिन जब इन पर ये अलामतें आ जाएंगी तो वो क्या बन, ये सबब आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे मारिफा, और ये सबब आप हटा दें फिर वो नकेरा बन जाएंगे। या रजुलू ये रजुल क्या था पहले नकेरा, या रजुलू अब क्या बन गया मारिफा, आप या को खत्म कर दें रजुलुन अब फिर क्या बन गया नकेरा बन गया। सिर्फ गुलाम, गुलाम क्या है नकेरा, गुलाम उजैदीन क्या बन गया गुलाम मारिफा बन गया, आप जैद को फिर मुजाफिले को खत्म कर दें गुलाम फिर क्या बन गया नकेरा। रजुलुन क्या है नकेरा, अर रजुलू क्या बन गया मारिफा, आप अलिफ लाम को खत्म कर दें रजुलुन फिर क्या बन गया नकेरा बन गया। तो पहले चार क्या हैं मारिफा, वो रहते ही मारिफा हैं, उनको बनाया ही मारिफा गया है, और आखिरी तीन वो नकेरा थे फिर ये सबब उन पर आया तो वो क्या बन गए मारिफा, और वो सबब खत्म कर दो तो फिर क्या बन जाएंगे नकेरा बन जाएंगे। फर्क समझ में आ गया हासिल कलाम। फिर सुन लो भाई, आज आपने मारिफा और नकेरा के बारे में पढ़ा, इन्होंने आपको बतलाया मारिफा वो है जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे, जैसे ही वो बोलें वो लफ्ज आपके जहन में कोई मुअय्यन चीज आ जाए या मुअय्यन माना आ जाए, अगर मुअय्यन माना आपके जहन में नहीं आता मालूम हुआ ये मारिफा नहीं है बल्कि क्या है नकेरा है। जैद मैंने जैसे ही बोला, आपका एक साथी है उसका नाम जैद है, फौरन आपके जहन में वो आ गया, और अगर कोई आपके जहन में नहीं आया फिर इसका मतलब है ये नकेरा है मारिफा नहीं है। तो मारिफा की कितनी किस्में हैं, सात किस्में हैं। पहली किस्म तमाम जमीरें, और जमीरें फिर तीन किस्म पर मुतकल्लिम की, मुखातब की और गायब की। तो इनमें सबसे ज्यादा तारीफ किसमें मुतकल्लिम, इंसान सबसे ज्यादा किसको पहचानता है अपने आप को, तो मुतकल्लिम की जमीरों का दर्जा सबसे पहले। दूसरे दर्जे पर मुखातब, मुखातब दूसरे दर्जे पर क्यों, क्योंकि वो आपके सामने मौजूद है आप उसको पहचानते हैं, आपके सामने इस वक्त मौजूद है आप उससे बात कर रहे हैं, और गायब क्या है आपकी नजरों से दूर है तो उसका आखिरी दर्जा है। दूसरा दर्जा किसका मारिफा में, याद रखो ये जो मुसन्निफ जिस तरतीब से मारिफा जिक्र कर रहे हैं इनके दर्जे भी इसी एतबार से हैं। सबसे ज्यादा तारीफ जमीरों में है वो पहले नंबर पर जिक्र किया, उससे कम तारीफ किसके अंदर है नाम में है उसको दूसरे नंबर पर जिक्र किया, उससे कम तारीफ किस में है अस्मा इशारा में उसको तीसरे नंबर पर जिक्र किया, उससे कम तारीफ किस में है अस्मा मौसूला में उसको चौथे नंबर पर जिक्र किया, उससे कम तारीफ किस में है मारिफा बन निदा में उसको पांचवें नंबर पर जिक्र किया, उससे कम तारीफ किस में है मारिफा ब अलिफ व लाम में उसको छठे नंबर पर जिक्र किया, और सातवें नंबर पर जिक्र किया जो इन पांच में से किसी की तरफ क्या हो मुजाफ। ये आखिरी दर्जे वाला नहीं है, ये जिसकी तरफ मुजाफ होगा उसी दर्जे का होगा। अगर कोई लफ्ज मुजाफ हो जमीर की तरफ तो जमीर किस दर्जे की, पहले दर्जे की, तो ये भी पहले दर्जे का मारिफा होगा। गुलामुहू ये किस दर्जे का मारिफा, पहले दर्जे का। गुलामी ये किस दर्जे का मारिफा, पहले दर्जे का। गुलाम उजैदीन ये किसकी तरफ मुजाफ है, जैद अलम की तरफ, और अलम किस दर्जे का, दूसरे दर्जे का। तो ये गुलाम भी किस दर्जे का मारिफा बन गया, दूसरे दर्जे वाला। गुलाम हाजा, हाजा किस दर्जे वाला मारिफा, तीसरे दर्जे वाला। तो ये गुलाम जो है ये भी किस दर्जे वाला बन गया, तीसरे दर्जे वाला। गुलाम उल्लदी जराबा का, ये गुलाम किसकी तरफ मुजाफ, अल्लजी की तरफ, और अल्लजी किस दर्जे वाला, चौथे दर्जे वाला। तो ये गुलाम भी किस दर्जे वाला मारिफा बन गया, चौथे दर्जे वाला। और इसी तरह गुलामुर रजुली ये किसकी तरफ मुजाफ, अर रजुल की तरफ, और अर रजुल किस दर्जे वाला, छठे दर्जे वाला। तो ये गुलाम भी किस दर्जे वाला बन गया, छठे दर्जे वाला मारिफा बन गया। तरतीब समझ में आ गई। और नकेरा किसके लिए वजह, किसके लिए वजह है, गैर मुअय्यन के लिए नकेरा वजह है। और नीज इन सात में मैंने बताया, इन सात में से चार जो हैं वो वजह के एतबार से ही मारिफा हैं, वो हमेशा मारिफा ही रहेंगे, और जो आखिरी तीन हैं उनमें वो असल में लफ्ज तो नकेरा था लेकिन उस पर मारिफा वाला सबब आ गया, यानी हरफ निदा आ गया उस पर, या अलिफ्लाम आ गया, या वो मुजाफ हो गया मारिफा की तरफ, तो फिर वो मारिफा बन जाएंगे। और अगर आप उस सबब को खत्म कर दें, यानी या हरफ निदा को खत्म कर दें, या अलिफ्लाम को खत्म कर दें, या मुजाफिले को खत्म कर दें, तो फिर वो क्या बन जाएगा? नकेरा बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और एक और कीमती बात भी याद रखना, याद रखो, अलल इतलाक सबसे ज्यादा तारीफ लफ्ज अल्लाह में है। ये सात किस्में आपने पढ़ी, लेकिन लफ्ज अल्लाह में जो तारीफ है ये सबसे ज्यादा है। ये जमीरों से भी बढ़कर इसके अंदर तारीफ है, यानी अल्लाह की जात को हर शख्स पहचानता है। तो सबसे ज्यादा तारीफ किस लफ्ज में? लफ्ज अल्लाह में। और याद रखो, लफ्ज अल्लाह आलम है, अल्लाह की जात, जात बारी ताला, वो जात जो तमाम कायनात के खालिक और मालिक है, उस जात का नाम, उसका आलम क्या है? अल्लाह भाई। जैसे किसी शख्स का नाम क्या होता है? जैद, किसी का नाम अमर, किसी का नाम बकर, ये जो है। और तो जात बारी ताला का नाम क्या है? अल्लाह। तो आलम है ये आलम, और आलम तो किस दर्जे में है? दूसरे दर्जे में। लेकिन लफ्ज अल्लाह दूसरे दर्जे में नहीं, ये अलल इतलाक सबसे ज्यादा तारीफ लफ्ज अल्लाह में है भाई, जमीरों से भी ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये लफ्ज अल्लाह में। और सबसे ज्यादा तनकीर, सबसे कम दर्जे का नकेरा, जिसमें सबसे ज्यादा उमूम है, वो शय उन है। शय उन, शय उन का माना चीज। ये किताब, ये भी क्या है? शय उन। कलम भी क्या है? शय उन। तालिब इलम भी क्या है? शय उन। तो इस शय उन में ये सबसे ज्यादा तनकीर है। तो अलल इतलाक सबसे ज्यादा तनकीर किस में? शय उन। और अलल इतलाक सबसे ज्यादा तारीफ किस में? लफ्ज अल्लाह में है भाई, लफ्ज अल्लाह में। चुनांचे उलमा, बाज़ उलमा ने ख्वाब में देखा, इमाम सीबुए भाई नह के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम सीबुए की बात नह के अंदर पहाड़ की तरह मजबूत समझी जाती है, इतना ऊंचा मकाम है उनका इल्म नह के अंदर भाई, नह के सबसे बड़े चोटी के इमाम भाई। और इमाम सीबुए जब इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद किसी ने इनको ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा, अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। पूछा, किस बात पर अल्लाह ने आपकी मगफिरत फरमाई? कहा, इस बात पर कि मैं इस बात का काइल था, मेरी राय यह थी कि लफ्ज अल्लाह में सबसे ज्यादा तारीफ है, इस बात पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी भाई। चलिए जी, अल्लाह आप सबको भी बड़ा आलिम बनाए और सबको खूब दीन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।